نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے. ہمارا آج کا سیشن کتاب الحیض کی کنٹینویشن ہے. اس سے پہلے ہم دو سیشن لے چکے, آج تیسرا سیشن ہے اور حدیث نمبر 217 اور ٹاپک یا چیپٹر نمبر 13 یا 13 سے ہم شروع کریں گے. کتاب کا صفحہ نمبر 194 ہے اور اس کا آخری حصہ, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ آج کا کیا ہے کہ حیض کے کپڑے پہننے کے باوجود حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا. النوم مع الحائض فی ثیابہا, یعنی ایک عورت پیریڈز کے دنوں میں ہے اور وہی کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ وہ اٹھتی بیٹھتی ہے, تو کیا کوئی دوسرا, یا آف کورس یہاں اشارہ شوہری کی طرف ہے, کیا انہی کپڑوں میں اس عورت کے ساتھ سو سکتا ہے کہ نہیں. آپ اپنے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں حیض کے دنوں میں, ایک تو نا کہ جہاں گندگی لگ گئی وہ, کیا عام دنوں میں یہ کپڑے گندے ہوتے ہیں. ہم پہلے اپنے عمل کو دیکھ لیں کہ ہمارے کلچر میں حیض کے دنوں میں پہننے ہوئے کپڑوں کے بارے میں کیا احکامات دیے گئے ہیں لوگوں کی طرف سے. کیا کہتے ہیں, جس دن شاور لیا سر سے پاؤں تک سارا گھر دھونا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو بات ہے نا کہ حیض کے دنوں میں پہننے ہوئے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, پسینہ آ گیا جن کپڑوں میں, وہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ مسئلے اتنے بڑے نہ بنتے, جب بنتے کب ہیں. کسی کو آپ شادی میں یا پارٹی میں دیکھے آئے نماز پڑھے, کہتے ہیں مجھے پڑھنی نہیں. کیسے نہیں پڑھنی, پیریڈز ہوئے نہیں, پیریڈز تو نہیں ہوئے. وجہ کہ یہ جو کپڑے پہننے میں, یہ ایک دفعہ پیریڈز میں پہنے تھے, پھر اس کو دھو نہیں سکے کیونکہ یہ فینسی کپڑے ہوتے ہیں, تو اب میں نماز نہیں پڑھوں گی. یہ مسئلہ اصل میں, ایسی کوئی بات نہیں. ایون کپڑے پہ داغ بھی لگ جاتا ہے. صحابیات کہتی ہیں کہ ہم کھرچ دیتی تھی, ان کے پاس تو پانی بھی نہیں ہوتا تھا, کھرچ کے صرف اس کا اوپر سے اثر اتار کے ان میں نمازیں بھی شروع کر دیتی تھی. تو آج کے دور میں کیا کہ اگر داغ بھی رہ چکا ہے تو بھی خیر ہے, بس اس کی پانی بہا کر جو علائش ہے گندگی اس کو دور کروا دے, تو پھر ان میں نماز ادا کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ ایسی عورت کے ساتھ کس طرح سے اختلاط ہو سکتا ہے. عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا حدیث حیدہا وہی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمیلہ تھی وثم قال فی ہذہ روایہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیض کے متعلق حدیث, پیچھے پڑھ چکے ہم لوگ 207 گزری ہے, جس میں ہے کہ وہ بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی, اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبلہا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو, قبلو کہتے ہیں حق دینے کو, گلے لگانے کو, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے سے لگا لیا کرتے تھے. وہو صائم, جبکہ وہ روزے سے ہوتے تھے. یعنی اس ایک حدیث سے کیا پتہ چلا کہ عورت جب پیریڈز میں ہے تو مرد اس کے ساتھ سو سکتا ہے, اس کو حق دے سکتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بہت زیادہ کنٹرول حاصل تھا. یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یہاں جو نئی چیز ہے وہ روزے کی حالت ہے, کہ اگر ایک مرد روزے کی حالت میں اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے, لیٹ سکتا ہے, اور کسی بھی شرعی پابندی کے ٹوٹنے کے ڈر کو اگر نہ محسوس کرے تو وہ اس کے ساتھ سو بھی سکتا ہے. یہ بالکل نارمل بات ہے. دیکھیں, دو ہی پابندیاں ہوتی ہیں نا عمومی طور پہ شوہر بیوی کے تعلق کے بیچ میں, ایک پیریڈز عورت کی طرف سے اور دوسرا یہ کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں روزے سے, ٹھیک ہے. تو یہاں مراد ہے کہ روزے کے وقت بھی اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ جاتے تھے, سو جاتے تھے. یعنی آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ میں نے خواہش پوری کر لی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور بیوی اگر پیریڈ سے ہوتی ہے تو بھی مرد اس کے ساتھ سو سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے, شرط یہ کہ اس کو اس چیز کا ڈر نہ ہو کہ وہ اپنے جذبات کی بہ میں اللہ کی کسی پابندی کو توڑ دے گا, ٹھیک ہے. اب اگلا ایک مسئلہ جو ویسے ہی ہمارے ہاں تو اتنا معروف نہیں ہے لیکن ہے بہت اہم بات, اور وہ کیا ہے کہ حائضہ عورت کا عیدین میں شمولیت کرنا. اللہ کے نبی کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ عید کا دن ہو, عید کی نماز کے لیے گھر سے مرد نکلیں اور عورتیں نہ جائیں. آج ہمارے گھروں میں کیا, عید پارٹیوں میں تو عورت جائے گی, کبھی کوئی مرد عید کی پارٹی میں بیوی کو گھر چھوڑ جائے تو ذرا سوچیے سارا خاندان کیا سوچے گا. چاند رات کو چوڑیاں پہننے پہنانے کے لیے جائیں گی تو لے جائیں گے, سب ہو جائے گا, لیکن جہاں بات ہوتی عید کی نماز کی کہتے ہیں وہ تو مرد ہی جانتے ہیں. آج بھی مسلمان ملک میں, پاکستان میں, मेरे 70-80% घरानों की खवातीन ईद की नमाज के लिए नहीं जाती, क्या मैं सही कह रही हूँ? आप में से कितने लोग नहीं जाते थे पहले? अब तो कुरान से जुड़ गए 1-2 साल में, कौन नहीं जाते थे? एक
पहले नहीं जाते थे, अब तो
दो
जाते
तीन,
हैं।
जी आप देख ले, मेजोरिटी नहीं जाती थी ना। और जो ईद की नमाज के लिए नहीं जाता, उसके लिए ईद के और खाना पकाने के दिन। औरतें शाम तक गंदी मंदी फिरती, सुबह ईद के लिए जाएं, तैयारी कर लें, नहा लें धो लें, तो फीलिंग आने लग जाती है कि भाई हम वाकई ईद मना रहे हैं। फिर आके चाहे औरतें चेंज कर लें, काम में लग जाए, लेकिन वो एक दिन का आगाज जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन आज यह हक खत्म किया गया, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि इतना अहम इशू है ये कि आम औरत तो आम औरत, पीरियड्स वाली औरत भी जाए, कैसे जाएगी? अब इसको हम पढ़ते हैं। अन उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा कालत, उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, कहती हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, यानी मैंने उनसे ये बात सुनी, क्या तखरुजुल अवाइकु ज़वातुल हुज़ूरी वल खुय्यदु। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि दुशीज़ा औरतें, यानी जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ, पर्दा नशीन औरतें और हाइजा औरतें सब ईद की नमाज के लिए जाए और क्या करें, वल यशहदनल खैरा, और खैर पे हाजिर हो। मतलब वहाँ मुसलमानों के लिए जो दुआएं की जाएंगी, जो वहाँ दर्स होगा, वास होगा, ये सब औरतें भी वहाँ जाएं, व दावतुल मोमिनीन, और मोमिनों की दुआओं में शामिल हों, व या तजिलुल खुय्यिदा अल मुसल्ला, और जो हैज़ वाली औरतें वो नमाज की जगह से अलग रहें। कीला लहा, और कहा गया वल खुय्यदु, यानी हैज़ वाली औरतें भी जाएंगी, यानी औरतों को हैरत हुई सुनकर कि पीरियड्स वाली औरतें ईद की नमाज के लिए जाएंगी। वकालत, तो कहती हैं अलई सयशहत न आरफत व कज़ा व कज़ा, तो जो तुम्हें अतिया ने जवाब दिया, क्या हैज़ वाली औरतें अरफात और फला फला मकामात पर हाजिर नहीं होती? क्या पता चला कि ईद की नमाज के लिए पीरियड्स वाली औरतें भी जाएंगी? अभी आप सवाल कर सकते हैं कि भाई अच्छा, आपने तो कहा कि औरतें मस्जिदों में नहीं जाती, तो फिर वहाँ कैसे जाएंगी? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि ईद का मसनून तरीका मस्जिद नहीं है, खुले मैदान है। ईदगाह कहा जाता है उसको, अल्लाह के नबी के दौर में भी ऐसे ही होता था, खुले मैदानों में औरतों को भी मर्दों को ले जाते थे। आज भी यही पसंदीदा है, लेकिन अगर कोई मजबूरी है, लाइक जैसे कि बारिश है या कोई इंतज़ाम ही नहीं है, तो फिर मस्जिदों में जाके पढ़ी जा सकती है, गुनाह नहीं है। लेकिन जो उमरा हैं, हुक्मरान हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ईद की नमाज़ का एहतमाम करें। कैसे एहतमाम करें? खुली जगह पे करें। अब आप फिर एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छा, कर फिर आज हमारे इर्द गिर्द कहीं है ही नहीं है, अगर तो थोड़ा दूर है तो पहले से मर्दों को ज़हनी तौर पर तैयार रख के वहाँ जाएँ। ज़रूरी नहीं कि बस आखिरी वक्त पर ही आपने कूदना है। अब देखिए, एक ईद की नमाज के तो दिन ऐसा होता है कि फजर के बाद सारा घर जाग रहा होता है, इल्ला माशाल्लाह। हमारे मुसलमानों में अब सुबह को सोने का जो रिवाज आ गया है, तो आजकल भी बचपन से वो जो मंजर हमने देखे हुए हैं, आज भी जब भी कभी हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है कहीं से भी कहीं जाने की, और फजर के बाद फौरन जल्दी से निकलना तैयारी, तो मेरे लाशौर में वो ईद का दिन चल रहा होता है। ऐसे लगता है कि आज ईद है और हम बस जल्दी जल्दी निकलने की तैयारियों में। तो इसमें पूरा इहतमाम करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं मर जा सकते कुछ, फिर आप मस्जिद में उस जगह तक चली जाइए जहाँ तक जाने की इजाज़त है। कॉमन एरियाज होते हैं, बाहर जूतों की जगह होती है, कोई बच्चों का रूम है, कोई डाइनिंग एरिया है। यहाँ की मस्जिदें सिंपल होती हैं, मॉडली, इतना ज़्यादा औरतों का इंट्रेक्शन नहीं, लेकिन बाहर के मुल्कों में जो मस्जिदें हैं ये पूरे पूरे सेंटर्स होते हैं, उसी में संडे सैटरडे स्कूल्स भी होते हैं, डाइनिंग एरिया, कैंटीन है, और अमूमन पूरी मस्जिद के अंदर साउंड सिस्टम एक जैसा होता है। तो फिर जिस हद तक जा सके वहाँ जाएं और बैठे पीछे, और जब दुआ का वक्त हो तो उस वक्त फिर दुआ में शामिल हो। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो बातें नहीं करेंगे। बाज़ दफ़ा ये बड़ी तकलीफ़ होती है रमज़ान में भी और ईद में भी, कि जिन सिस्टर्स ने नमाज नहीं पढ़नी होती, आ तो वो जाती हैं मस्जिदों में भी, लेकिन पीछे बैठ के बातें करती रहती हैं, तो दूसरों के आराम का ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ मिसाल देखिए कितनी अच्छी दी उम्मीतिया ने, कि क्या औरतें अरफात के मैदान में नहीं जाती? सोचने की बात है। और आपको ये मसला भी यहाँ से फिर मिल गया कि पीरियड्स वाली औरत अरफात के मैदान में जाएगी, मिना जाएगी, मुजलफा, सब जगह जाएगी, सिर्फ तवाफ इफाजा नहीं करेगी, उसके लिए वो हजरत आयशा वाली हदीस ने सुन ली कि बाद में जाके करेगी। तो खुले मैदान में एक औरत पीरियड्स वाली हालत में जा सकती है, कोई हर्ज की इसमें बात नहीं है। ठीक, और आपके बच्चों को दिखना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के अपने जो रिचुअल्स हैं, अगर इसका इहतमाम हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे बच्चों ने फिर दूसरों के मनवाने हैं ना। आज क्यों कह रहे हैं ईदें बोर हो गई और वैलेंटाइन और क्रिसमस और इनको बहुत अच्छी तरह से मनाने लग गए। अगर आप बच्चों को चाहते हैं कि वो दूसरी चीज़ों से दूर हैं तो फिर उनको इस्लामिकली या जो जायज़ हद तक उनका एंटरटेनमेंट है वो ज़रूर दें, ताकि वो बाद में यही ना कहने लग जाएं कि इस्लाम इज़ बोरिंग। ठीक है, फिर अगला देखिए। अब यहाँ इसमें हम देखेंगे कि कैसे हैज़ के ख़त्म होने का, देखें जो भी हमने अपने लफ्ज़ों में बात की है, बाब क्या है, या में हैज़ के अलावा हक स्त्री और जर्द रंग देखना, यानी ये जो हमारे आखिरी दिन होते हैं उसके अंदर ब्राउनिश डिस्चार्ज वगैरह या येलोइशनेस है उसकी तरफ इशारा है। असुफरतु वल कुदरतु फी गैरी अय्यामिल हैज़, हज़रत उम्मतिया से ही ये रिवायत है। वन रदी अल्लाह अनहा कालत, और उन्हीं से रिवायत है, वो कहती है कुन्ना थे हम ला नहीं नाउद्दू गिनते अल कुदरत वल सुफरत शैयन, मिटियालेपन और जर्दीपन को कुछ भी समझते नहीं थे, यानी इसे हैज़ ख्याल नहीं करते थे। क्या पता चला कि मखसूस याम इस रंगत का खून बरामद हो तो इसे हैज़ ही समझा जाएगा, अगर दूसरे दिनों में आ जाए तो हैज़ नहीं समझा जाएगा। बस लोगों को लिख्योरिया की तकलीफ़ होती है, वाइट डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ इशारा है कि हम आम दिनों में अगर पीरियड्स के अलावा जिस्म से कोई भी ऐसी गंदगी देखते थे तो हम उसको कोई अहमियत नहीं देते थे। ठीक है, इसमें ये मुराद है। फिर तवाफ इफाजा के बाद हैज़ का आना, अल अमरतु तहीदु बादल हिफाजत, अब औरत हज पे गई हुई थी, तवाफ इफाजा भी कर चुकी है जो कि आपको पता है कि हज के अरकान में से एक बुनियादी रुकन है, उसके बाद पीरियड्स आ जाएंगे तो फिर औरत क्या करेगी। हज़रत आयशा से ये रिवायत है, वन आयशा तो रदी अल्लाह अन्हा ज़ौजिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हा क़ालत ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के नबी की ज़ौजा हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल इन सफ़ीया था, बेशक सफ़ीया, सफ़ीया कौन थी, अल्लाह के नबी की दूसरी बीवी थी, बिनत हुयई, यानी हज़रत सफ़ीया के बाप का नाम हुई बिन अख्तब था, यहूद के एक बहुत बड़े सरदार भी थे, तो उनके लिए कहती हैं कद खादत, उनको तो हैज़ आ गया। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्लाहा तख्बिसुना अलम तकुन ताफत माकुन्ना, तो आपने फरमाया वो शायद हमें रोकेगी, क्या इसने तुम्हारे साथ तवाफ इफाजा नहीं किया। फ़कालु बला, क्यों नहीं, कहा कि काला फखरुजी, तो कहा फिर चलो, फिर ज़रूरी नहीं। अब इसको समझिएगा, एक होता है तवाफ़ इफाज़ा जो हज के उन्हीं दिनों में किया जाता है, एक होता है तवाफ़ अलविदा जो आखिरी किया जाता है। एक औरत जब तवाफ़ इफाज़ा कर चुकी, फिर उसके बाद पीरियड्स हो गए और अब उसके जाने का वक्त आ गया, तो फिर तवाफ़ अलविदा ना भी करेगी तो कोई हर्ज की बात नहीं। हाँ, तवाफ़ इफाज़ा नहीं किया जो पीछे बात हुई, तो फिर इंतज़ार करेंगे, जब औरत पाक होगी तो वही मस्जिद आयशा से जाकर एहराम बांधकर तो फिर उसको दोबारा एहराम की नियत के साथ वहाँ तवाफ जो है वो करना होगा। ठीक है, तो ये पीरियड्स वाली औरत इसके बगैर वहाँ से आ सकती है। अच्छा, ये तय कि अगर कोई गई और उसको फौरन ही आना पड़ गया, तवाफ हिफाजा कर ही नहीं सकती, फ्लाइट है हज के अगले तीसरे दिन दूसरे दिन, अब क्या करेंगे, सवाल समझे। हज के लिए लोग गए, ग्रुप में गए, अमेरिका से गए, यूके से गए, नॉर्वे से गए, जहाँ से भी गए, हज के चौथे ही दिन वापसी थी, अब औरत को पीरियड्स हो गए, तवाफ हिफाजा नहीं कर सकी, और तवाफ हिफाजा ना करना क्या है कि हज नहीं हुआ, तो क्या करेगी औरत, इंतजार कर नहीं सकती, लोग छोड़ जाएंगे जी, वो हज फिर दोबारा करेगी। ठीक है, ये अल्लाह का हुक्म है, उसको इस हज का अजर मिलेगा लेकिन उसका फर्ज नहीं पूरा हुआ। जैसे एक हर एक पे हज का फर्ज, देखिए आजमाइशें आती हैं ना जिंदगी में, किसी का बच्चा फौत हो जाता है, किसी का शौहर चला जाता है, कितना हम सब्र करते हैं, तो ये नेकियों पे सब्र क्यों नहीं करते। आप गए थे हज करने, नहीं कर सके, आ गए, अल्लाह का हुक्म। यानी कई लोग जो होते हैं ना, इन छोटी छोटी बातों पे बहुत दिमाग लगाते हैं, भाई मैं तो अल्लाह आई थी, आपने नहीं कराया, मैं क्या करूं, अल्लाह मुझे फिर ले जाए, हो सकता है उस वक्त का सब्र उसको अगले एक दो साल बाद फिर हज पे ले जाए, और अगर वो अगले साल तक ना जी तो अल्लाह को पता है, गुनाह तो नहीं देगा ना अल्लाह ताला। जी फिर उसके ऊपर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हर चीज का अल्लाह ने जवाब दिया हुआ है, यकीन करें, बस ये काम कर लें कि जो अल्लाह के फैसले हैं उस पर राजी रहे, कभी भी उसके बारे में चूं छा ना करें, तो जब आप नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला भी आपसे राजी हो जाएगा। جو چیز آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کو اللہ کے اختیار میں دے دیں. اب ایک اور مسئلہ میرا خیال ہے یہ بھی پاکستانیوں ہی کے اندر زیادہ معروف ہوگا کہ اب ایک عورت ہے پیریڈس میں فوت ہو گئی تو کیا اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا کہ نہیں. تو اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. نفاس والی عورت کا جنازہ پڑھنا اور اس کا طریقہ. الصلاۃ علی النفسائی و سنتہا. عن سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان امرأة ماتت فی بطن. ایک عورت فوت ہو گئی بچے کی پیدائش کے دوران, یعنی بچہ پیدا کرنے کے دوران عورت فوت ہو گئی. فصل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز جنازہ پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی. فقامہ تو آپ کھڑے ہوئے. وسطحا اس کی کمر کے درمیان. یعنی عورت کو جب جنازے کے لیے لٹایا جاتا ہے تو عورت کی بالکل مڈل جو ہوتا ہے نا اس کے پیچھے امام کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے جب ایک عورت کی نماز پڑھی جبکہ وہ نفاس کی حالت میں تھی, اور نفاس آپ جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں 40 ڈیز, تو پھر آج بھی ایسی عورت کا جنازہ پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نعوذ باللہ ناپاک ہو گئی ہے یا کیسے چلتی ہے. اچھا اب ایک اور سوال ہے کہ ایک عورت پیریڈ سے تھی تو کسی جگہ بیٹھی اٹھی لیٹی بستر پہ, تو کیا بعد میں وہاں کوئی نمازی بندہ آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے, یا جس عورت پہ پیریڈز کے دنوں میں ایک عورت بچی یا عورت لیٹتی ہے تو کیا وہاں کوئی مرد جا کے لیٹ سکتا ہے؟ اس کی دلیل ہم دیکھیں گے اگلے باب میں. ان میمونۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ اللہ کے نبی کی زوجہ تھی, ان سے یہ روایت ہے. انہا کانت تکون حائضا لا تصلی. کہتی ہیں کہ جب وہ حائضہ ہوتی تو وہ نماز نہ پڑھتی. وہی مفترشتو بخزاء مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابها بعد صوبه. کہتی ہیں کہ یہ خود نماز تو نہیں پڑھتی تھی تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ کے پاس جا کے لیٹی رہتی. حجرے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے آپ کے ازواج کے, تو وہاں جا کے یہ لیٹتی تھی. اللہ کے نبی اپنی چادر پر نماز پڑھتے, جب سجدہ کرتے تو آپ کا کچھ کپڑا ان سے مس ہو جاتا تھا. تو کیا پتہ چلا کہ حیض کے دوران عورت کے جسم کو کپڑا لگ جانا چھو جانا اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات کیا پتہ چلی کہ ایک عورت لیٹی ہوئی ہے. اب یہ بھی مسئلہ تھوڑا سا آپ کو نیا لگے گا. آپ ایک اور روایت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تھے تو آدھی رات کو اٹھ جاتے تھے تہجد کے لیے, تو حضرت عائشہ سامنے سو رہی ہوتی تھی, اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے, اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ سجدہ کر سکے. تو جب آپ کو سجدے میں جانا ہوتا تھا تو آپ ہلکا سا ہاتھ سے ان کو اشارہ کرتے تو وہ اپنے بدن کو سکیڑتی اور آپ اس جگہ پہ سجدہ کرتے, اور جب آپ دوبارہ کھڑے ہوتے تو اور حضرت عائشہ پھر پاؤں پھیلا لیتی. ایک بندہ سو رہا ہے اگر اس کے پیچھے آپ کے جگہ ہی اتنی ہے, ٹرین میں ہے جہاز میں ہے یا گھر ہی کمرہ اتنا چھوٹا ہے, تو نماز پڑھی جا سکتی. اس طرح بس بچہ بیڈ پہ سو رہا ہوتا ہے, آپ اسی کے پیچھے, اب جگہ ہی ایسی ہے کہ قبلہ ادھر ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, نماز ادا کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے.
ایک بات اور پوچھنی تھی کہ اگر دو نمازیں لگاتار قضا ہو جائیں, تو جیسے عصر کی مغرب کی قضا ہو گئی کسی وجہ سے کہیں گئے ہیں, تو عشاء میں دونوں کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں میں اگر آپ کو لفظ قضا کا معنی بتا دوں نا تو پھر آپ اس سوال کو بہت ہی زیادہ نیکسٹ ٹائم غور سے سوچیں گے نا. قضا کا معنی موت ہے. جب ایک نماز کا وقت چلا گیا تو پہلی نماز فوت ہو گئی. یہ جو ہم بعد میں نماز پڑھتے ہیں نا, وہ ایک مردے کو کھینچتے ہیں. جیسے اب فوت تو ایک ہو ہی گئی ہے چیز, اب اس کو اٹھا کے زندہ کرنے کی کوشش کرنا. وہ نماز جو وقت پہ پڑھی تھی اس کا درجہ تو کبھی بھی نہیں قضا نماز لے گی. خانہ پوری کہہ لیں, معافی اللہ سے مانگ لیں, کچھ بھی کر لیں, کچھ سوان جو آپ کی خوشی ہے, لیکن یہ یاد رکھے کہ نماز جان کے قضا نہیں کر سکتے. اور میں اپنے شعور سے کہہ سکتی ہوں, بدگمانی تو نہیں ہے, کہ اس طرح جب عصر اور مغرب دو نمازیں قضا ہوتی ہیں تو اس میں 98% ہمارا بازار ہوتا ہے. ظہر کے بعد جاتے ہیں, عصر بھی مانگ گئی, مغرب بھی گئی, جب اندھیرا ہوا دکانیں بند ہوئیں تو گھر آئے, اور بعض دفعہ عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے جب آتے ہیں, تو یہ بے برکتی کی بات ہے. اگر آپ بازار جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے, آپ وہاں اہتمام کریں کہ نماز ادا کریں, مسجدیں ہیں وہاں ہیں, اور جب ڈیمانڈ ہوگی تو ضرورت پوری کریں گے. آپ دیکھیے یو اے ای میں اور باہر ایمیریٹس میں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں, ہر مال کے اندر مسجد ہے, ہر ایئرپورٹ پہ دنیا پہ مسجد ہے, नॉर्थ मुस्लिम मुल्कों में से हम चल के आते हैं, जुमे की नमाजें होती हैं। एक दफ़ा हमारा कभी ऐसा सफ़र लिया नहीं, लेकिन वो इत्तेफाक था कि जुमे के दिन का खुद हमारा फ्लाइट टाइम था, तो हम अंदर प्रेइंग रूम में गए, तो मेरे हस्बैंड थे, मैं थी, और भी लोग आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जाते हैं। बिल्कुल इन्होंने बाकायदा खड़े होकर, जैसे मस्जिद में खुतबा होता है, पहले खुतबा दिया खुद, मैं ही बैठी हुई थी, मैंने भी सुना, पहले इन्होंने अजान दी, फिर खुतबा दिया, फिर खुतबे के बाद इन्होंने नमाज़ पढ़ाई, इन दोनों ने मिल के नमाज़ पढ़ी। बल्कि वो हमारा गुमान है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करेगा, तो वो मुझे भी जुमा पढ़ने का अजर मिल जाएगा ना। तो मोमिन कभी मजबूर नहीं होता, वो रोक नहीं लिया जाता, उसको कोई रोकेगा तो वो वहीं खड़ा होकर भी पढ़ लेगा। जिस चीज़ को आपने खरीदा इस सोच के साथ कि आप उसको अपने लिए लेके चलते हैं, भाई के मैं इससे दुनिया का कोई काम कर लूं, चलो नमाज पीछे रहूं, उसमें बरकत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये टॉपिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यानी किताबुल हैज में से पूरा हुआ, लेकिन चूंकि अहम इशू है, तो मैं किताबुल तहारत, जो हमारी तहारत के मसाइल बुक है, वैसे डिटेल से है, इसको अलग से भी आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं इसके जो मसाइल है ना, वो सिर्फ गो थ्रू कर देती हूँ, ताकि अगर कोई ये हदीस का ही बाप सुन ले तो भी उसको वो सारे मसाइल पता चल जाएं। तो इस बुक के पेज नंबर 48 पर हैज़ और निफास के मसाइल हैं, मैं सिर्फ इनकी हेडलाइट्स पढ़ना चाहूँगी। आप सुनने वालों को एक तरीका दे सकती हूँ कि अगर आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इन मसाइल को नोट करें, तो आपके ऐसे किस्म का छोटा सा हैंड आउट तैयार हो जाएगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हैज़ और निफास के मसाइल, हैज़ के दिनों की तादाद मुकर्रर नहीं, किसी माह कम किसी माह ज़्यादा दिन हो सकते हैं। हैज़ की इब्तिदा हर माह एक ही तारीख पर होना ज़रूरी नहीं, किसी महीने देर से और किसी महीने जल्दी इब्तिदा हो सकती है, यानी नेचुरल साइकिल है, तो 19-20 का फ़र्क चलता है। मुद्दत हैज़ हर खातून के लिए अलग अलग हो सकती है। हैज़ शुरू होने और ख़त्म होने की मुद्दत, उम्र, आबो हवा और ख़वातीन के घरेलू हालात के पेश नज़र हर मुल्क में मुख्तलिफ हो सकती है। हालत हैज़ में औरत का जिस्म और कपड़े दोनों पाक होते हैं। हाइजा के हाथों का खाना, उसका अपने खाविंद के सर को धोना, कंघी करना और खाइजा का जूठा खाना जायज़ है, यानी औरत का छोड़ा हुआ खाया जा सकता है इन दिनों में। हैज़ की हालत में औरत का बोसा लेना यानी किस करना, उसको जायज़ है। हालत हैज़ में औरत से नफरत करना या खाने पीने का अलहदा अहतमाम करना नाजायज़ है, यानी उसको बिल्कुल आइसोलेटेड छोड़ देना और बिल्कुल उसको मनहूस समझना या नजस समझना, ऐसी कोई बात नहीं है। हैज़ा से सोहबत करना मना है, यानी ख़ास ताल्लुक इंटरकोर्स जो है वो मना है। हैज़ा ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है। हैज़ शुरू होने से ही रोज़ा ख़त्म हो जाता है, ख्वा सूरज गुरूब होने से एक लम्हा पहले ही क्यों ना हो। हैज़ की वजह से रोज़ा ख़त्म होने के बाद खाना पीना जायज़ है, अलबत्ता इस रोज़े की कज़ा वाजिब है, यानी जब गैस आ गया तो खाएं पिएं, भूखे ना रहें कि जी मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि मैं रोज़ा छोड़ूं, खा लीजिए ताकि आपको अल्लाह की नेमत का एहसास हो। हाइजा के लिए रोज़े की कज़ा है लेकिन नमाज की नहीं है। अगर कोई औरत रमज़ान में फजर की अजान से पहले हैज से पाक हो जाए और गुसल का वक्त ना हो, तो पहले रोज़ा रखकर बाद में गुसल कर सकती है। वक्त थोड़ा है, या खा लेगी या नहा लेगी, तो नहा तो बाद में सकती है, खा तो बाद में नहीं सकती, तो खा ले और गुसल बाद में कर लेगी। कपड़े पर हैज़ के खून का दाग लग जाए तो इतनी जगह धोकर इसी कपड़े में नमाज अदा की जा सकती है, इवन अगर गीला भी हो कपड़ा, और इवन अगर उस पर दाग भी लगा हो, अगर उसकी गंदगी निकल गई है, स्टेन नहीं भी निकल सका, तो भी उस पर नमाज पड़ेगी। हाइजा के लिए मस्जिद में ठहरना जायज़ नहीं, अलबत्ता गुजर सकती है, बाज़ ज़रूरत होती है, रास्ता होता है, कोई चीज़ लेके आनी देनी होती है, छोड़नी होती है, बाज़ मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं कि निकलना है जाना है, तो औरत गुजर तो सकती है, बैठ नहीं सकती। हालत हैज़ में जाए नमाज को हाथ लगाना, उस पर बैठना, जिक्र करना, तस्बीह तहलील और दुआ वगैरह सब जायज़ है। बाज़ दफ़ा हैज़ का नाम लेकर औरतें फिर बिल्कुल नकारा हो जाती हैं, दुआएं भी नहीं पढ़ती और ही नहुसा सी जारी होती है, तो बल्कि ज़्यादा कुरान सुनना चाहिए, ज़्यादा दुआओं का इहतमाम करें, क्योंकि आम दिनों में हम लोग क्या करते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं तो उससे हमारा शैतान से ज़रा बचाव रहता है ना। अब आपने सोचिए कि नमाज भी नहीं पढ़ी और आप दुआओं से भी अपने आप को दूर कर लेंगी, और इस तरह का कोई जिक्र अस्कार भी नहीं करेंगी तो फिर शैतान और ज़्यादा सुस्ती डालेगा। इसलिए बाज़ दफ़ा जो लोग इन चीज़ों का इहतमाम नहीं करते तो वो बीमार फील करते हैं और बिस्तर पर लेटे रहते हैं। इससे अवॉइड करना चाहिए। हैज़ का खून ना लगे तो हैज़ा के कपड़े पाक रहते हैं, जिन्हें धोए बगैर नमाज पढ़ी जा सकती है। हैज़ा का दुपट्टा या चादर ओढ़कर दूसरी औरत नमाज पढ़ सकती है। बाज़ लोगों का दुपट्टा ले तो लोग मना कर देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हैज़ से पाकीज़गी हासिल करने के बाद अगर खाकी या जर्द रंग का पानी खारिज हो तो दोबारा गुसल करने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ से पाकीज़गी हासिल करने के बाद बेजा उजलत यानी बहुत जल्दी करना और बेजा ताखीर यानी देर से काम करना ये दुरुस्त नहीं है। गुस्ल हैज़ में ताखीर होने पर कज़ा नमाज अदा करना चाहिए। बात तो हो गई थी लेकिन ये एक स्ट्रेच में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी चीज़ें। हैज़ा पाकीज़गी की हालत में जिस नमाज के अव्वल या आखिर वक्त में से एक मुकम्मल रकत अदा करने का वक्त पहले, इसी वक्त वो नमाज उसे अदा करनी चाहिए। ठीक है, बिला वजह डिले नहीं कर सकते। कपड़े पर हैज़ का खून लग जाए तो इसे अच्छी तरह साफ करके इसी में नमाज पढ़ी जा सकती है। कपड़े से हैज़ का खून साफ करने का तरीका क्या है? हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि एक औरत नबी सल्लम के पास आई और अर्ज़ किया, अगर किसी के कपड़े पर हैज़ का खून लग जाए तो इसे कैसे साफ करे? तो आपने फरमाया, पहले इसे अच्छी तरह खुरच दे, फिर इसे पानी से मलकर धोए, इसके बाद इस पर पानी छिड़के और फिर इसी में नमाज पढ़ ले। इसे बुखारी ने रिवायत किया। आज हमारा तो कोई इशू ही नहीं है, हमारे लिए तो अल्लाह की इतनी रहमत है, लेकिन उस दौर में इतना मुश्किल था कपड़ा धोना कि अल्लाह के नबी ने करके बताया कि कम अज़ कम जो ऊपर आलाइश है उसको खुश्क पहले खुरच लो, कहीं ऐसा ना हो कि पानी की कमी की वजह से डायरेक्ट पानी जब डाला तो वो और ही कुछ चीज़ बन जाए। जिस हद तक सूखा सूखा ऊपर से उतारने का मौका उसको उतार लिया जाए, बाद में पानी डाल दें। गुसल से पहले हैज़ा से सोहबत करना मना है, ख्वाह अय्याम हैज़ की मुद्दत कम हो या ज़्यादा हो। दौरान हैज़ सोहबत करने का कफ़ारा यानी अगर अल्लाह की हद टूट जाए तो क्या कफ़ारा है? 1 दीनार, और 1 दीनार कितना होता है? 4 ग्राम सोने का। आजकल 1 ग्राम सोना कितने का ऑलमोस्ट किसी को पता? 3-4 हज़ार का तो हो गई ना। हाँ चले, आप लगा लीजिए 3500 ग्राम, मिसाल ले ले देते हैं 4 ग्राम, 35, 35 15 से भी ज्यादा बनता है, यानी 4 ग्राम सोने की कीमत जो है वो देनी होती है। जबकि हैज़ ख़त्म होने लेकिन गुसल से कबल सोहबत करने का कफ़ारा नेस्ट दिनार यानी 2 ग्राम सोना सदका। क्यों? अल्लाह की हद तोड़ी। ठीक है, और आप देखिए कि जोश के दिनों में ज़्यादा गुना है और आखिरी दिनों में कम है। वैसे भी आखिर में तक एक सबर भी चल चुका होता है तो हर हुक्म की हिकमत को भी समझा जा सकता है। फिर हैज़ा को मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करना मना है, अलबत्ता एक एक आयत तोड़कर पढ़ सकती है। ये जो मुसलसल पढ़ने की मना की बात है, ये जब भी हम ये बुक भी पढ़ते हैं तो मैं इधर में कोट करवाती हूँ कि आप देखिए, ये कौल है इब्राहिम नखई का, ये हदीस नहीं है कि एक आयत पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं। बुखारी ने रिवायत किया, यानी कुरान पढ़ सकती औरत उसको छू नहीं सकती खाली हाथ के साथ। हैज़ा कुरान मजीद को हाथ ना लगाए, अगर पकड़ना ज़रूरी हो तो कपड़े से पकड़ना चाहिए, यानी ग्लव पहन ले या फिर पेंसिल के साथ किसी चीज़ से टच कर ले। शौहर की इजाज़त से हैज़ लाने और हैज़ रोकने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करना जायज़ है। दौरान हैज़ बीवी को तलाक देना मना है। तो जितने डोंट्स थे उसमें एक सबसे बड़ा डोंट क्या है कि पीरियड्स के दिनों में बीवी को तलाक नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये एक छोटा सा खुलासा था हैज़ का। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे एक अहम टॉपिक पूरा हुआ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।